श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 4 और आज के श्लोक संख्या है 32। तो मेरे पीछे दोहराइए, हाथ जोड़ लीजिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरे पीछे दोहराइएगा। अस्तिति नास्तिति च वस्तुनिष्ठयोर् अस्तिति नास्तिति च वस्तुनिष्ठयोर् एकस्थयोर् भिन्न विरुद्ध धर्मनो एकस्थयोर भिन्न विरुद्ध धर्मनो अवेक्षितं किंचन योग्य सांख्ययो अवेक्षितं किंचन योग्य सांख्ययो समं परं हि अनुकूलं बृहत्तता समं परं हि अनुकूलं बृहत्तता। अस्ति है इति इस प्रकार न नहीं अस्ति है इस प्रकार च वस्तुनिष्ठ च तथा वस्तुनिष्ठयो परम कारण के ज्ञान का अनुयायी एक स्थयो एक ही विषय भ्रम को स्थापित करने से युक्त भिन्न अलग दिखाते हुए विरुद्ध धर्मणों तथा विरोधी अवेक्षितम अनुभूत किया किंचन वह जो कुछ योग सांख्ययो योग तथा सांख्य दर्शन का समम समान परम दिव्य ही निसंदेह अनुकूलम निवास स्थान बृहत्तर वह परम कारण। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। संसार में दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है और परम कारण को चाहे वह भगवान हो परमात्मा हो या ब्रह्म ही क्यों न हो स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, किंतु अंतगत्वा दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक पर ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, वस्तुतः इस तर्क के दो पक्ष हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्म के कोई आकार नहीं होता निराकार, और अन्य कहते हैं ब्रह्म के आकार है साकार, अतः आकार शब्द उभयनिष्ठ है। यद्यपि कुछ इसे स्वीकार करते हैं अस्ति या आस्तिक, जबकि अन्य लोग इसका निषेध करने का प्रयास करते हैं नास्ति अथवा नास्तिक। क्योंकि भक्त आकार को मानता है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, अतः वह आकार को सादर नमस्कार करता है। भले ही अन्य लोग तर्क वितर्क करते रहें कि ब्रह्म के आकार है या नहीं। इस श्लोक में योग सांख्ययो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ भक्ति योग है, क्योंकि योगी जन सर्वव्यापक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदयों के भीतर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 12:13:1 में कहा गया है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, जबकि योगी ध्यान द्वारा परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास करता है। इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से योग का अर्थ भक्ति योग है, किंतु सांख्य का अर्थ है चिंतन परक ज्ञान के माध्यम से विराट जगत का भौतिक अध्ययन। यह सामान्यतः ज्ञान शास्त्र कहलाता है। सांख्यवादी निर्वेश भ्रम से जुड़े होते हैं, किंतु परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य तो एक है, किंतु कुछ लोग उसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कुछ सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के रूप में, तथा कुछ लोग भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। केंद्र बिंदु तो परम सत्य ही है। यद्यपि निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी एक दूसरे से भिड़ते हैं, किंतु वे उसी पर ब्रह्म, उसी परम सत्य पर केंद्रित होते हैं। योग शास्त्र में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार हुआ है, कृष्णम पिशांगवरम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाध्य उदायुधम। इस तरह से भगवान के आनंददायक शारीरिक स्वरूप, अनेक अंगों तथा उनके वेश का वर्णन किया जाता है, किंतु सांख्य शास्त्र भगवान के दिव्य रूप के अस्तित्व को नहीं मानता। सांख्य शास्त्र कहता है कि परब्रह्म के न तो हाथ हैं, न पांव और न नाम। ही नाम रूप गुण पाणि पादम अचक्षुर श्रोत्रम एकम अदित्यम अपि नाम रूपादिकम नास्ति। वैदिक मंत्रों में अपाणी पादो जवनो ग्रहीत कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के पांव तथा हाथ नहीं है, किंतु जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाता है उसे स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे कथन यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के हाथ पांव हैं, किंतु वे इस बात से इनकार करते हैं कि उनके भौतिक हाथ पांव हैं। इसलिए ब्रह्म को अप्रकृतिक कहा गया है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह हैं, ऐसा रूप जो नित्यता ज्ञान तथा आनंद रूप है, भौतिक रूप नहीं है। सांख्यवादी या ज्ञानी भौतिक रूप को नहीं मानते, और भक्तगण भी भली भांति जानते हैं कि परम सत्य भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं है। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्वकारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं, उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। बिना हाथ पांव वाले ब्रह्म की धारणा तथा हाथ पांव युक्त ब्रह्म की धारणा स्पष्टतः परस्पर विरोधी है, किंतु दोनों ही परम ब्रह्म पुरुष के विषय में एक ही सत्य पर जाकर मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त वस्तु निष्ठयो शब्द यह सूचित करता है कि योगी तथा सांख्यवादी दोनों ही सत्यता तत्व पर विश्वास करते हैं, किंतु वे भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचानों के विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके विषय में वाद विवाद करते हैं। पर भ्रम या बृहत उपनिष्ठ बिंदु है, सांख्यवादी तथा योगी दोनों ही उसी एक भ्रम पर स्थित है, किंतु अपने भिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनमें भेद है। भक्ति शास्त्र में दिए गए निर्देश सही दिशा को इंगित करते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। भक्तगण जानते हैं कि परम पुरुष के कोई भौतिक रूप नहीं है, जबकि ज्ञानी भौतिक रूप का केवल निषेध करते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति मार्ग की शरण लेनी चाहिए, तभी हर बात स्पष्ट हो सकेगी। ज्ञानी लोग विराट रूप पर मन को एकाग्र करते हैं, जो लोग नितांत भौतिकतावादी हैं उनके लिए प्रारंभ में ये अच्छी प्रणाली है, किंतु लगातार विराट रूप के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया तो उसने उसे देखा, किंतु वह उसे निरंतर देखना नहीं चाहता था। अतः उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने आदि द्विभुजी कृष्ण का रूप धारण कर लें। निष्कर्ष यह है कि विद्वानों को भगवान के आध्यात्मिक रूप पर भक्तों की मन एकाग्रता में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि अल्पज्ञ अभक्तजन सोचते हैं कि उनका निष्कर्ष अंतिम है, किंतु पूर्णतः विद्वान होने से भक्तगण यह समझ सकते हैं कि भगवान चरम लक्ष्य है। यहाँ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से हम सभी आप वैष्णव जन वैष्णवी माता इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि इस छोटे से समय में हम कुछ चर्चा कर पाएँ। बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है और इस श्लोक के बारे में जो कुछ आपको आया को जल्दी पढ़ा मैं, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ये है कि दो प्रकार के लोग हैं यहाँ जो बताया गया है संसार में, आस्तिक नास्तिक। और जो व्यक्ति आस्तिक भी हैं वो तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। कौन कौन से? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो विचार है जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान आपका साकार है कि निराकार है, तो ये जो वाद विवाद है, ये जो युद्ध है, ये काफी समय से चलता रहता है, काफी समय से चलता रहता है, गंभीर विषय है। क्या समझते हैं आप भगवान के बारे में? आप तो वृंदावन वासी हैं, भगवान के निराकार रूप से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सब्जेक्ट आप पे लागू ही नहीं होता। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसी जिसकी भावना है उसी के अनुरूप वो प्रभु की तस्वीर देखता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने कहा कि अपनी भावना नहीं, कृष्ण भावना अमृत संघ का स्थापना कर दी प्रभुपाद ने। देखना है तो क्या देखना है, कृष्ण की भावना। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की गई कि आप कृष्ण की भावना में रहो, और किसी भावना में रहने से कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं है। कल स्थापना हुई कृष्ण भावनामृत संघ की अमेरिका में, कल का दिवस था और यहाँ उसी के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये जो सब्जेक्ट है कि भगवान निराकार है कि साकार है, ये कब से है? अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया भगवान से, 5000 वर्ष पूर्व भी ये प्रश्न था। भगवत गीता के 12वें अध्याय में पहला ही प्रश्न, जबकि ऐसे समय में जब युद्ध की भूमि में खड़े हैं तब भी अर्जुन ने ये प्रश्न कर ही डाला। क्या कर डाला? एवं सतत युक्ता युक्ता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते ये चाप यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्वेश भ्रम की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे पूर्ण माना जाए? पहला प्रश्न उन्होंने ये कर दिया 12वें अध्याय में। और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, मई आवेश है मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेता ते में युक्तमा मता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अगर भगवद गीता का आश्रय लिया जाए तो निराकार रूप का प्रश्न ही नहीं उठता, तो निराकार रूप का प्रश्न ही नहीं। अनेक जगहों पर भगवान हर श्लोक में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, तो भगवान जो है साकार रूप है, लेकिन फिर भी ये मतभेद चलता रहा है। शिला प्रभुपाद इस विषय के ऊपर वृंदावन धाम में सन 1972 में लेक्चर दे रहे थे निर्विशेषवाद के ऊपर। तो उन्होंने इस श्लोक था जिनको उन्होंने कोट किया, भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवंतम अथोक्षजम सत्वम शुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। तो उस प्रवचन में उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद ने कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। पूर्व काल में कब से? जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से अनेक ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, तो उन सब ने भगवान की सेवा की, भगवान का आश्रय ग्रहण किया। उस वक्त कोई निराकारवाद निर्विशेषवाद कुछ नहीं था, कोई बोलबाला नहीं था। क्योंकि क्यों भगवान की सत्ता को स्वीकार किया? क्योंकि वे प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, शिला प्रभुपाद लिखते हैं, और उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सारे अनेक ऋषि मुनि उत्पन्न किए, तो कोई निर्विशेषवाद नहीं था, कोई निराकारवाद था ही नहीं। तो यह सिद्धांत कि परम सत्य निराकार है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति कब से हुई? इसकी सृष्टि जो है कालांतर में हुई, समय जैसे गुजरता गया उसके अनुरूप जो है ये सृष्टि बलवान होती गई। क्यों होती गई? जब ये बात जीव सोचने लगा कि एक व्यक्ति कैसे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, ये संभव नहीं। एक व्यक्ति ब्रह्मांड को रचना कर सकता है ये बात स्वीकार करने योग्य है ही नहीं। तो इसीलिए वो व्यक्ति नहीं, वो तो कोई शक्ति है। तो व्यक्ति से शक्ति पे आ गए, और शक्ति क्या होती है? वो निराकार होती है। कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे जीवों का पालन करे, सबका पालन पोषण करे? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान, ये तो संभव ही नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस बात को सिद्ध करने के लिए वेदांत की आवश्यकता पड़ी। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर स्वरूप है जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जीव पे कृपा करने के लिए व्यास देव जी ने वेद और पुराण हमको दिए, और वेदांत पे अधिकार समझा जाने लगा सबसे ज्यादा किसका? निर्विशेषवादियों का। ये वेदांत सूत्र वेदांत तो हमारे लिए है, लेकिन वेदांत जो है सब वर्गों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है, जिसपे निर्विशेषवादी निराकारवादी गौड़िया वैष्णव सबका अधिकार है, सब वर्गों के द्वारा ये मान्य है, ऐसा शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं। सामान्य रूप से समझा जाता है कि वेदांत पर निराकारवादियों के अधिकार हैं, लेकिन यह विचार गलत है। शिला प्रभुपाद कहते हैं रामानुजाचार्य मध्वाचार्य महाप्रभु और हम सभी जन वैष्णव जन प्रभुपाद कहते हैं वेदांती है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। तो वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमको मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, कौन है, परम सत्य क्या है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इस जिज्ञासा का सारा जो जवाब है वो शिला व्यास देव श्रीमद् भागवतम में देते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है जन्मादियस्य एक एक एक, इसमें पूरा का पूरा वेदांत का उत्तर जो है इसका आ जाता है। तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव के आचार्यों ने इसके ऊपर अलग से टीका करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं समझी, कि वेदांत के ऊपर कोई टीका करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जयपुर में प्रश्न उठाया गया कि गौड़िया वैष्णव का अपना कोई भाष्य नहीं है, इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा था गौड़िया वैष्णव को, तो उस वक्त हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य जो है वेदांत के ऊपर टीका लिखी। तो ये वेदांत सूत्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है माना जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जो है इस चक्र में फंसे रहते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, या भगवान है कि नहीं है, भगवान के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। तो इसी के आज के श्लोक में जो मुख्य रूप से बताया गया है वो यही बताया गया है कि भगवान को तीन स्टेजेस हैं, भगवान को समझने के लिए तीन स्टेजेस हैं। या तो ब्रह्मवादी है ना, जो भगवान को ब्रह्म ज्योति में देखते हैं, ब्रह्म में लीन, अंततः लीन हो जाते हैं, या परमात्मावादी जो योगी जन हृदय में देखते हैं भगवान को चतुर्भुज रूप में, या फिर भक्त हैं जो भगवान को देखते हैं श्री राधा श्याम सुंदर के रूप में, गौनेताय के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, अनेक रूपों में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान के अनंत रूप हैं और वेदेशु दुर्लभम, वेद तो ये दिए लेकिन वेदों के माध्यम से भी हम भगवान को नहीं जान पा रहे। कैसे जान सकते हैं भगवान को? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। तो ये जो निराकारवाद है, ये जो निर्विशेषवाद है, ये क्या है, इसको कैसे समझे? क्या उनकी फिलॉसफी बिल्कुल गलत है? हमें ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। फिलॉसफी उनकी बिल्कुल गलत नहीं है, 100% गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं है। वो लोग इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे तो कई प्रकार के इसमें बताए गए हैं किस तरीके से, जैसे सूर्य की किरण और सूर्य की सतह और सूर्य, तीन प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, या भाप का उदाहरण देते हैं, बर्फ का उदाहरण देते हैं, पानी का उदाहरण देते हैं। लेकिन इसको आप और सरलता से समझ सकते हैं, जैसे भारत की सरकार है, भारत की सरकार, भारत में पूरा कार्य कर रही है, लेकिन भारत की सरकार साकार है कि निराकार है, बताइए? हाँ, निराकार है, लेकिन सरकार तो है, कार्य भी कर रही है, लेकिन कैसी है? निराकार। लेकिन क्या सरकार से बात की जा सकती है? मतलब सरकार से संबंध स्थापित हो सकता है? सरकार से जो निराकार है उससे कैसे हो जाएगा? पदाधिकारी से होगा, जो सरकार के पदाधिकारी हैं। तो सरकार में जो है, जो सरकार को चला रहे हैं, वो साकार है। जो सरकार को चलाने वालों से जिसका संबंध हो जाता है वो साकारवादी हो गए, और जो केवल सरकार सरकार को देखते हैं वो निराकारवादी हो गए। अगर भारत सरकार को अमेरिका की सरकार से बात करनी है, तो क्या सरकार सरकार से बात कर सकती है? कौन बात करेगा? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेगा। तो इस ब्रह्मांड के प्रधान कौन है? सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी सी बात अगर इनको थोड़ा समझ में आ जाए तो समस्या नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं पुअर फंड ऑफ नॉलेज, दे हैव पुअर फंड ऑफ नॉलेज, वो समझना नहीं चाहते। तो केवल आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितना भी हम अध्ययन कर लें, तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाएंगे, हम भी धोखा खा जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? भक्ति की शरण लेनी होगी। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सारी सृष्टि किसकी है? भगवान की है, भगवान की सृष्टि है। तो वासुदेव जी पहला ही श्लोक जो मंगलाचरण है, जिसमें वो पुष्टि करते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे वसुदेव, पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। किस लिए ध्यान करता हूं? क्योंकि वे परम सत्य हैं, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। एक भगवान प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आप जानते हो, लेकिन शास्त्र में भगवान भी जानते हैं कि आपको कब भूख लग रही है, कब आपको प्यास लग रही है। ये है भगवान की भगवत्ता, ये भगवान की भगवत्ता है। और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण ही नहीं है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों की बात क्या है, बड़े बड़े मुनि इस तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर मोहित हो जाते हैं। उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं। ये ब्रह्मांड वास्तविक लगता है जबकि ये अवास्तविक है। अवास्तविक का मतलब अनित्य है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से पृथक सर्वदा अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वह परम सत्य है। तो ये अगर पहला श्लोक भी अगर हम ध्यान से समझें मंगलाचरण का, भागवतम का, तो हमारी सारी भ्रांतियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से और निराकार में जो लगे हुए हैं वो जो भक्ति करते हैं या जो वो समय लगाते हैं उसमें क्या अंतर है? उनको क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होता? क्या उनका रिजल्ट शून्य है? नहीं, 84 लाख की योनि, 84 लाख का जो ब्रह्मांड है उसको तो वे भी प्राप्त मतलब पार कर सकते हैं, ब्रह्म ज्योति में वो भी जा सकते हैं अगर अपनी साधना पर पूर्ण रूप से टिके रहे हैं। पूर्ण रूप से निराकारवादी बनो ना आप। लेकिन निराकारवादियों का समस्या यह है कि वो एक जगह टिक भी नहीं पा रहे, वो कंफ्यूज हैं। अगर आप पक्के निराकारवादी हैं तो आपको दीपावली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, अपने घर में दीपक नहीं जलाने चाहिए। जलाते हैं ना लोग, देखिए सबके घरों में दीपक जलते हैं। भाई क्यों जला रहे हो आप, क्यों जला रहे हो आप, पूछिए उनसे क्या कारण है दीपक जलाने का, क्या बताएंगे? भगवान राम आए थे तो आप तो निराकार हैं, आप भगवान राम से आपका क्या लेना देना? आपको होली भी नहीं खेलनी चाहिए। क्यों खेलते हो होली? एक साधारण सी बात, होली के पीछे भी भगवान, भगवान की कथा और भगवान के सारे जुड़े हुए हैं। तो आप अगर पूर्ण रूप से निराकारवादी रहते हो तो पूर्ण रूप से निराकारवादी रह करके दिखाओ, आप रह नहीं पाओगे। आप कोई भी उत्सव आप मना नहीं सकते क्योंकि हर उत्सव भगवान के साथ जुड़ा हुआ। आपका जीवन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल नीरस हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा। अगर फिर भी आप में शक्ति है निराकारवाद को स्वीकार करने की तो आप कीजिए, फिर आपको दो चीजें प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी आपको कुछ नहीं देंगे, आपको दो वस्तु प्राप्त हो सकती हैं लेकिन तीसरी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। क्या प्राप्त हो सकता है? आपको सत्य प्राप्त हो सकता है, आप सत्य की खोज में आपको सत्य प्राप्त हो सकता है, आप ज्ञान की खोज में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन आनंद की खोज आप मत कीजिएगा, आपको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आनंद जब प्राप्त होगा जब आप व्यक्ति विशेष से संपर्क साधेंगे। जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष से संपर्क नहीं साधेंगे तो आपको आनंद कैसे प्राप्त हो सकता? इसीलिए जो निर्विशेष है, जो निराकारवादी हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाकर के भी उनको वापस लौटना पड़ता है। क्योंकि वहां करने को कुछ नहीं, वापस लौटते हैं और यहाँ आकर के पुनः फिर वो सत्वगुणी कार्यों में लगते हैं, हॉस्पिटल बनवाना, ये करना, वो करना, ये कार्य करना, वो करना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या ब्रह्म ज्योति में जाना है? क्या हमारा लक्ष्य केवल भगवान का हृदय में दर्शन करना है, या हमारा लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरी बात आती है, तो हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? है ना, हमारे अंदर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे हमारे को भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम उसको जो है थोड़ा आज श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय, क्या कहता है 12वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक श्री भगवान उवाच, कृष्ण बता रहे हैं उद्धव से। श्री भगवान उवाच, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्यायस् तपस्त्यागो नेष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश छंदासी तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहो इमाम। तात्पर्य अनुवाद यह है, भगवान ने कहा हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से, भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी भक्ति करो, क्या कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करो और उनकी संग में रहो। तो ऐसा करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है, मैं भक्त के वश में हो जाता हूं, अहम भक्त पराधीना। तो आगे बताया गया है, भगवान कह रहे हैं कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करे, जैसे सांख्य योग की चर्चा की गई, तात्पर्य बड़ा लंबा था, इतने तात्पर्य को हम पूर्ण रूप से नहीं विश्लेषण कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए उसको हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि जो सांख्य योग की चर्चा की गई उसको करे, अष्टांग योग करे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अद्वैत सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों की स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। इतना सब कुछ करने के बाद तो ठाकुर जी आप कैसे, हम तो कैसे आपको रिझा सकते हैं, आप किसके वश में आते हो? तो भगवान फिर बताते हैं अगले श्लोक में। अब ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की है। भगवान कह रहे हैं रजोगुण और तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की है। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक तथा विद्याचार जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। तो कौन कौन से नाम बताइए भगवान, तो बता रहे हैं, चल रहा है क्या शोक? वृत्तासुर है ना, प्रहलाद महाराज, तथा उन जैसे अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। वृत्तासुर ने प्राप्त किया जो चित्रकेतु थे, प्रहलाद महाराज असुर कुल में प्राप्त हुए, असुर कुल में जन्म हुआ, और अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इस तरह वृषपर्वा बलि महाराज, बाणासुर, मया, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, देखिए, यानी ये जो हैं जो वानर योनि में हैं या जो पशु योनि में हैं, जामवन, गजेंद्र, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, तुलाधर, धर्मव्याध और कुब्जा, वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर गईं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुख्य बात यह है कि अगर हमें भगवान श्री वृंदावन धाम में जो विराजमान हैं थे राधा श्याम सुंदर, अगर हमको उनका सानिध्य प्राप्त करना है, उनकी भक्ति में रहना है, तो हमें क्या करना है? भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का संग करो। ये मैं भक्तजना पार्था ना मैं भक्तास्ते में जना, भगवान कहते हैं जो वास्तव में मेरी सीधी भक्ति करता है वो मेरा भक्ति में। और कई दफा तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाकर के भी हम क्या करते हैं? अब कितने लोग हैं जो कई सालों से बिहारी जी आते होंगे, 30-30, 40-40 साल हो गए बिहारी जी के दर्शन करते करते, लेकिन अभी तक उनकी चेतना शुद्ध नहीं हो पा रही है। सिर्फ भगवान के दर्शन करके और बाहर बिहारी जी के चाट पकौड़ी खा करके और वो चले जाते हैं और समझते हैं कि बस हमारा कार्य हो गया। तो जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा, जब तक भक्त हमको नहीं सिखाएंगे, तो तब तक हम इस भौतिक देहात्मा से इस हम बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान जब वहाँ आए थे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, तब भगवान ने कहा, क्या कहा? यस्यात्म बुद्धि कुनपेत्रु धातु के स्वधि कलात्रि दिशो भौम्य इज्जति। जो बुद्धि ये समझता है कि ये शरीर तीन धातुओं का बना हुआ है, कफ, पित्त और वायु, ये शरीर मैं स्वयं अपने आप को क्या मानता है? ये शरीर मानता है तीन धातुओं से बना हुआ, कफ और पित्त वायु से, आई एम दिस बॉडी। अगर वो ऐसा समझता है, ये सात्म बुद्धि कुणपे त्रि धातु के या स्वधि कलत्रादिशु भौम्य इज्जति, या कलत्रादिशु मतलब अपने परिवार में, अपने बच्चों में, पत्नी में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखता है, या भौम इज्जति, या जहाँ उसका जन्म हुआ है जन्म भूमि पे अपनी बुद्धि को लगाता है, उसकी पूजा करता है, या तीर्थ बुद्धि सलीले न करचित, या तीर्थ में जाकर के अपनी बुद्धि इतनी लगाता है कि बस मेरे को स्नान करना, मेरा तीर्थ हो गया, इससे अधिक और कुछ नहीं करता। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करचित जनेशु अभिज्ञेशु, लेकिन जो भक्ति में चढ़े हुए जो ज्ञानवान हैं, जनेशु अभिज्ञेशु, अगर उनसे नहीं मिलता न करचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा, तो वो केवल गाय या गधे के समान बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस प्रकार से हमारा जो सिद्धांत है, हमारे को जो श्रील प्रभुपाद ने जो मार्ग दिखाया है, एकदम सटीक मार्ग दिया है, आप धीरे चलो तेज चलो ये आपको तय करना है। लेकिन देखिए हमारे हाथ में आम है, आम, आम को पकड़े रखो, हो सकता है कच्चा आम है आज आपको स्वाद नहीं दे रहा, लेकिन आम को छोड़ना नहीं, धीरे धीरे करके ये आम पक जाएगा और फिर आपको इसमें रस आने लगेगा। अभी हम उनको देखते हैं जिनको रस आ रहा है, उनको रस आ रहा है, हमें भी आएगा, हमें क्यों नहीं आएगा? आम को छोड़ना नहीं है। तो ये आम है, इसको प्रभुपाद ने हम सबको दिया है, इसको छोड़ना नहीं। तो जब नाम नामी का जब नाम लेंगे तो फिर हमें धामी का धाम मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नामी का नाम लेते लेते धामी का धाम मिल जाएगा। जब इन असुरों को मिल गया, जब पशुओं को मिल गया, पक्षियों को मिल गया, तो हे गोविंद हमने तो श्रील प्रभुपाद का आश्रय लिया है, हमारे पे कृपा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो तीन मिनट का समय है हमारे पास, चार पाँच मिनट का, अगर किसी का कोई टिप्पणी प्रश्न कोई है, कोई अगर करना चाहता है तो स्वागत है, अन्यथा बोलिए प्रभु आप कुछ कमेंट दीजिए। माइक आपको दे रहा हरे कृष्ण। जी समझा नहीं। दोनों का अपना अपना महत्व है। जो वपु सेवा है, जो आज हमारे मध्य में आचार्य हैं, जिनका हम संग कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हमारा कान पकड़ सकता है, ग्रंथ हमारा कान नहीं पकड़ सकते। अगर हम गलती करेंगे तो ग्रंथ हमारे कान को नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए दोनों आवश्यक हैं अपनी अपनी जगह पे, और केवल एक का नहीं लेना, दोनों का ही आश्रय लेना है। मतलब ये है कि सबके हृदय में परमात्मा तो बैठे हैं ना। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, और देखते ही आपको हृदय से आवाज़ भी आ जाती है कि मेरे को किसके पास जाना है, किसके साथ बैठना है, किससे सुनना है। ये तो सारा कार्य ठाकुर जी करते हैं, इसमें हमारा प्रयास नहीं चलता। हमारी क्या योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं थी। हमारे को शिला प्रभुपाद के संपर्क में हम आए, हम इस्कॉन के संपर्क में आए, हमें वैष्णव इतने प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनका हमको संग मिला। तो हम अपने प्रयास से, हमारे प्रयास से एक्चुअली कुछ होता नहीं। हम बहुत अच्छी कथा कर सकते हैं तो क्या मैं भगवत धाम जा सकता हूं? नहीं। मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, क्या मैं भगवत धाम जा सकता हूं? नहीं। कौन जा सकता है? जिसको भगवान चुनते हैं वही भगवत धाम जा सकता है। और भगवान किसको चुनते हैं ये भगवान को देखना है। हमारा कार्य है केवल प्रयास करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंद है।